तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। सुबह हम चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण जीवन का ऑक्सीजन पवित्रता, क्या महत्व है इस पवित्रता का, क्यों जरूरी है ये पवित्रता। अगर ये पवित्रता ना हो जीवन में तो क्या हो जाता है। आज तक इस संसार में अध्यात्म के क्षेत्र में जो भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में पवित्रता का तेज और बल था। ऐसा शायद ही कोई इस अध्यात्म में महारथी होगा, सच्चा महारथी, जिसके जीवन में पवित्रता का तेज और ओज न हो। एक है पवित्रता का ज्ञान होना, एक है वो जीवन में आ जाना, एक है उसकी थोड़ी थोड़ी समझ होना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, सूचना। दूसरा है वो जीवन का अभिन्न अंग बन जाना। इसमें अंतर है। बाबा ने मुरलियों में सुबह भी कहा, पवित्रता के विषय में बहुत गहरी परिभाषाएं दी है, और जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा ने जो आचरण किया है वो करना अर्थात ब्रह्मचर्य। ये बहुत बड़ी परिभाषा है ब्रह्मचर्य की। परंतु आज के इस रात्रि क्लास में हम ब्रह्मचर्य व्रत क्या है इसकी चर्चा करेंगे। वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। अखंड ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, ये शब्द हम सभी ने सुने हैं। ऐसी वो आठ बातें हैं जिन्हें आठ गांठें भी कहा जाता है। यदि इन आठ बातों में से किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन होता है तो उसे ब्रह्मचर्य का खंडन कहा जाएगा। ऐसी वो आठ बातें, यदि उन आठ बातों में से एक बात का भी किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन होता है, खंडन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता, महावीर नहीं कहा जा सकता, महा अधिक वीर, महा अधिक वीर्य से शब्द बना है महावीर। ऐसे अखंड ब्रह्मचारी, ऐसे अखंड आत्म संयम की साधना करने वाले योगी। सुबह माली का उदाहरण दिया था, तो इस चर्चा की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं जो कि शास्त्रों में आती है। व्यास का नाम सभी ने सुना है, महर्षि व्यास। उसका एक महातेजस्वी पुत्र था शुकदेव, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं सुखदेव, परंतु उसका नाम वास्तव में शुकदेव। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानते स्मि। वह शुकदेव उस कहानी में दिखाया है कि व्यास अपने बेटे से कहते हैं कि तपस्वी ने या ब्रह्मचारी कभी भी अकेला निवास ना करे। शुकदेव कहता है मुझे किसी का डर नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे किसी संगठन की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला भी रह सकता हूं। उसके पिता ने उसे समझाया, नहीं माना। एक दिन व्यास ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं एक पास, तब तक तुम स्वयं को संभाल के रखना। वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, व्यास जी तो चले जाते हैं शुकदेव अकेले अपनी कुटिया में। एक दिन, एक शाम, तेज वर्षा हो रही थी, शुकदेव जी अपनी कुटिया में हैं, देखते हैं कि किसी की आवाज आ रही है जो कि उनकी कुटिया के बाहर है। सर्द रात, ठंड है, बारिश आ रही है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय होता है मक्खन की तरह हो जाए, तुरंत पिघलता है, करुणा और दया से भरा हुआ। वो बाहर आकर देखते हैं तो देखते हैं एक स्त्री खड़ी है, एक युवती जो भीग रही है और जिसे ठंड लग रही है। उसके हृदय में करुणा जाग उठी। वो कहता है कि आप अंदर आ जाओ, मैं बाहर रुकता हूं झाड़ के पास। और उस स्त्री को वो कपड़े भी देते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। बारिश चालू है, रात आगे बढ़ती है। सुखदेव कुटिया के थोड़ा बाहर है, वो स्त्री अंदर है। सुखदेव परम तपस्वी है, ब्रह्मचारी है। धीरे धीरे मन में कुछ हलचल होने लगती है। वो स्त्री अकेली है अंदर। सोचता है उससे बात करूं थोड़ी। अंदर आके पूछता है कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? वो कहती है कोई तकलीफ नहीं। फिर बाहर आता है। रात और आगे बढ़ती है। फिर मन में कुछ हलचल होती है और सर्दी बहुत है। बारिश भी थोड़ी थोड़ी अब कम हुई है पर है। फिर दरवाजा खोल के अंदर आता है, कहता है कि बारिश ज्यादा है, ठंड भी बहुत है, मैं भी अंदर ही रुकता हूं। तो वो भी अंदर ही रुकता है। अब दोनों एक ही कुटिया में हैं। रात और आगे बढ़ती है, हलचल और बढ़ती है, इच्छाएं कामना का रूप धारण करती है। कामना जब तीव्र हो जाती है उसे वासना कहा जाता है। इच्छा, कामना और वासना, ये यात्रा है। इच्छा, कामना, वासना। कामना उत्पन्न होती है, इससे और थोड़ी बात करो, और उससे बात करना चालू करता है। कामना और तीव्र होती है, वह वासना में रूपांतरित होती है। सोचता है इसे स्पर्श करो। कौन है ये? तपस्वी है, अखंड ब्रह्मचारी है। उसके जीवन में दिखाया है एक बार, जैसे ही सुखदेव का जन्म होता है वो भाग रहा है, उसके पिता उसके पीछे है। वहां पर स्त्रियां कुछ स्नान कर रही है, सुखदेव जब यहां से गुजरता है तो वो अपना कार्य चालू रखती है, परंतु जब बूढ़ा व्यास आता है वो अपने आप को ढक लेती है। वो स्त्रियां, वो पूछता है सुखदेव व्यास कि मेरा पुत्र जब यहां से आया जो जवान है और मैं तो बूढ़ा हूं, फिर ये भेद आपने क्यों किया? वो कहती है तुम्हारा बेटा तो परम तपस्वी है, उसे तो यही पता नहीं स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। वो उस आत्मिक स्थिति में स्थित है। ये वो सुखदेव है आज इस कुटिया में, जिसके लिए इस तरह का गायन है। धीरे धीरे इच्छा उत्पन्न होती है, और समीप जाऊं और समीप जाऊं, और उसे वो पकड़ लेता है, और उतने में व्यास जी प्रकट हो जाते हैं स्त्री के रूप में, उसके ही पिता। और उसको कहते हैं मैंने कहा था ब्रह्मचारी को अकेले नहीं रहना चाहिए, ऐसी ये ब्रह्मचर्य की साधना। इतनी आसान नहीं है। जन जन से भोग के संस्कार आत्मा में है, कैसे उस परम अवस्था को प्राप्त किया जाए जिसमें ये काम और ये वासनाओं से आत्मा ऊपर निकल जाए। और वो सुबह जो दो बातें कही, एक भोग का मार्ग, एक दूसरा दमन का मार्ग। वो दमन भी ना हो, वो भोग भी ना हो, परंतु ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ, सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, दिव्यीकरण। जैसे भोजन का उदाहरण सुबह दिया था, ऐसा उससे सहज ऊपर उठ जाए, ये ऊपर उठ जाना, ये ऊपर निकल जाना ही वास्तविक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य है। अगर इस तरह जब तक हम ऊपर नहीं उठते, हलचल होती रहेगी। क्रोध की हलचल, लोभ की हलचल, मोह की हलचल, अहंकार की हलचल बहुत छोटी है, बहुत छोटी। जो काम की हलचल है और काम का आवेग है, काम का जो तूफान है, जो सुनामी है, चाहे कोई कितने भी समय से ज्ञान में है, चाहे मधुबन में है या सेंटर में है, या समर्पित है या गैर समर्पित है, कोई भी हो, यदि सावधान नहीं तो ये तूफान ऐसा है कि जो भी गांव बसा के रखे हैं ज्ञान और योग के, सब बहा ले जाता है। तो ऐसी कौन सी वो आठ बातें हैं आठ गाठे, अगर उनका खंडन हो जाए तो उसे ब्रह्मचर्य का खंडन कहा जाता है। सबसे पहली देखना, सबसे पहला देखना, देखने की इच्छा, एक दूसरों को देखकर अपने काम की तृप्ति करती है आत्मा। तपस्वियों के नियम है, यदि कोई दिख जाए रास्ते में एक बार देख लेना स्वाभाविक है, पर दूसरी बार उसको फिर से देखने की इच्छा, दूसरी बार देखना ये कामना है, तीसरी बार फिर उसी को देखना ये वासना है। देखना, देखकर इस देह को देखने की इच्छा, चित्त को आंदोलित करती है, देह को देखने की आदत है, इसमें सुख अनुभव होता है आत्मा को। परंतु ब्रह्मचर्य का पहला खंडन ही यहां से चालू होता है, देखना, किस दृष्टि से देखा जा रहा है, देह को देख रहे हैं या आत्मा को देख रहे हैं। 69 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, देह क्या है, विष, सांप है, सांप, आत्मा है मणि, सांप में विष होता है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, सांप में क्या होता है, विष, वो जो सांप है संसार का रेंगने वाला, वो यदि काट ले बचाया जा सकता है, आईसीयू में मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए एंटीवेनम है, उसके विरोध की दवाई, परंतु ये जो सांप है ये ऐसा काटता है, और ज्ञान योग की ऊंची अवस्था से जब आत्मा नीचे गिरती है उठना बहुत मुश्किल है, कितना ही योग लगाओ, कितना ही अमृत विला करो, कितना ही ज्ञान सुनाओ सुनाओ या सेवा करो, मुश्किल है, असंभव नहीं है परंतु मुश्किल है, समय बहुत जाएगा। उस पवित्रता की ऊंची अवस्था से आत्मा जब नीचे गिरती है पहला देखना, देखना है तो क्या देखना है, फिर आत्मा को वो तो दिखाई देती नहीं, अदृश्य है, दिखता है वो देह है, थियोरी कितनी भी हो कि आत्मा को देखो पर दिखता तो कुछ नहीं है, दिखता है देह, परंतु आत्मा को देखने का अभ्यास या फिर भ्रुकुटी के मध्य को देखने का अभ्यास, इसके नीचे माया चालू होती है। देखना है तो केवल यहां, लक्ष्मण से पूछा जाता है ना, वानर जो गहने दिखाते हैं। राम जी पूछते हैं कि क्या ये सीता के है, वो कहता है मैंने कभी उसके गले की तरफ देखा ही नहीं, चेहरे की तरफ, मैं तो हमेशा पैरों को ही देखता रहा। देह को देखने मात्र से हलचल उत्पन्न होती है, परंतु हां यदि देह को देखना ही है तो फिर देह के वास्तविक रूप को देखो। अस्थि पंजर यह देह है क्या, इसमें देखना है तो सुबह जो चार बातें कही थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इसका दर्शन करो, जन्म का मृत्यु का जरा का और व्याधि का। कहां है वह सौंदर्य बुढ़ापे में, जब चेहरे पर झुर्रिया पड़ जाए, कहां है जब वो मांस सारा निकल जाए, कहां है। ब्यूटी इज बट स्किन डिप, इंग्लिश में कहावत है, केवल इस चमड़ी तक ही है, और वास्तव में देह में सौंदर्य है ही नहीं, भ्रम है कि जो भास रहा है परंतु है नहीं, अनुभव हो रहा है परंतु है नहीं, कंडीशन हुआ है माइंड, सोशल मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल और वातावरण आसपास का। इसलिए देखना है तो वास्तविक स्वरूप को देखो। एक बुरा शरीर कहां है सौंदर्य, एक बीमार शरीर कहां है सौंदर्य। इसके लिए सभी कुमार बीच बीच में हॉस्पिटल में चक्कर लगाया करें। क्या करेंगे हॉस्पिटल जाकर, किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई पूछ ले गलती से कहां आए थे तो कह देना किससे मिलने आए थे। किस लिए चक्कर लगाएंगे हॉस्पिटल में, किस लिए, देखने के लिए। यह है देह, यह है अंतिम निष्पत्ति, कोई नहीं छूटा है। वो था महा सिद्धार्थ गौतम, देखा एक बार और संसार से वैराग आ गया, छोड़ दिया संसार को, कुछ नहीं है इस संसार में। गरीब बीमार व्यक्ति को देखा, बूढ़े को देखा, मृत्यु को देखा और फिर सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर उसे जो तेज दिखा, छोड़ दिया। उसका जो सारथी था चन्ना, जब रथ से वो नीचे उतरे तो चन्ना ने कहा कि देखो इतना सुंदर राजप्रासाद, राजभवन, एक बार मुड़कर तो देखो, कैसे आप छोड़कर जा रहे हो, वो आपकी पत्नी, वो आपका बच्चा, वो आपके पिता, वो आपकी मां। बुद्ध पीछे देखते हैं और कहते हैं मैं केवल आग की लपटें देख रहा हूं और कुछ नहीं, केवल और केवल आग, सब नष्ट होते देख रहा हूं। ऐसा परम वैराग हृदय में जब तक नहीं, इस ज्ञान योग में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे बाकी सब कुछ हो, कितनी भी सेवा कर लो, परंतु हृदय में यदि वासनाएं हैं, यदि हृदय को काम आंदोलित कर रहा है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए दिखाया है कि बुद्ध के पास जब भी कोई व्यक्ति संन्यस्त होने आता था, संन्यास की दीक्षा लेने, वो उसको कहते थे कि 3 मास तक मरघट पर जाओ, शमशान घाट पर, सुबह से लेकर रात तक केवल चिताओं को जलता देखना है। क्या करना है, चिताओं को जलता। कैसे बचा पाओगे स्वयं को वैराग से, देखना है शरीरों को जलते हुए, आग की लपटों में आते हुए, नष्ट होते हुए, तत्व तत्व में मिलते हुए, फिर कैसा आकर्षण इस देह में, इस चमड़ी में। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंड्यूसिव टू पेन। गीता में महावाक्य है कि जो जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होगा अंत तो गत्वा दुख में परिणीत हो जाएगा। जो जो सुख स्पर्श से उत्पन्न सुख है, टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंड्यूसिव टू पेन, दुख का अनुभव होगा। वह सुख जो पहले अमृत की तरह लगता है दुख में हो जाए, दुख हो जाएगा एक दिन। वह सुख जो पहले दुख समान है वह अंत में सुख होगा। ब्रह्मचर्य की साधना बहुत कठिन है परंतु अति सुखदायी बन जाएगी एक दिन। हॉस्पिटल में जाना है, क्या करेंगे? जाकर चक्कर लगाना है बीच बीच में सरकारी अस्पतालों में, देख के आना है चुपचाप, साक्षी होकर, डिटैच होकर। यह है मनुष्य जीवन, यह है देह। कहां है वो सौंदर्य? शमशान घाट यह दूसरा स्थान है। वहां किस लिए जाना है? चिताओं को जलता देखने के लिए। तब वैराग आएगा। पहला पॉइंट था देखना, किस दृष्टि से देख रहे। बाबा ने कहा है देखना है तो केवल मणि को देखो। ये देह का विष ऐसा है केवल देखने मात्र से ही प्रवेश कर जाता है, काटना तो बहुत दूर, केवल देखने से अंदर प्रवेश करता है। सर्वोच्च दृष्टि आत्मिक दृष्टि है। पांच रूपों में सभी कुमार हर स्त्री को देखे। सबसे पहला आत्मा, दूसरा, यदि आत्मा देखना बहुत कठिन है, दूसरा देवी के रूप में देखे, तीसरा शक्ति के रूप में देखे, चौथा बहन के रूप में देखे, और पांचवा क्या होगा? मां के रूप में देखे, जगत जननी के रूप में देखे। आत्मा, मां, बहन, शक्ति, देवी, या फिर भाई भाई की दृष्टि, ये ऊंची चीज है थोड़ी, वो आत्मा में आ गया। यह दृष्टि हो, ऐसी दृष्टि ना हो जिससे विकार के उत्पन्न होने की संभावना हो, क्योंकि उत्पन्न होने के बाद फिर उसको रोकना मुश्किल है। वो चेन है, लिंक है, एक के बाद एक, जैसे बॉल है नीचे डाला सीढ़ियों से, वो नीचे ही जाएगा, उसका ऊपर आने की कोई संभावना नहीं है। एक बार नीचे फेंक दिया तो। पहला देखना, दूसरा स्पर्श करना, टच। ऐसी आठ चीजें हैं, उसमें सेकंड है टच। ये जो टैक्टाइल सेंसेशन है, हलचल, यहां पे हमारे हाथों में बहुत सारी नर्व्स एंडिंग होती है, उसका जो सेंसेशन है क्षणिक सुखद अनुभव कराता है, परंतु ये जो स्पर्श है वो जो काम अंदर है उसकी ही एक अभिव्यक्ति है। यह संकल्प उत्पन्न होना ही, सीधा यह संकल्प नहीं उत्पन्न होगा, उसके पहले बहुत सारी हलचल है, उसके बाद यह उत्पन्न होगा, और यह हो गया तो वो वहीं नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। इस वुड लकड़ी को स्पर्श करते हैं तो कोई हलचल नहीं है, क्योंकि इसके प्रति शायद कोई भावना नहीं है। इस माइक को स्पर्श कर रहे कुछ नहीं होता है, परंतु यदि यह किसी का हाथ है तो हलचल होगी, क्योंकि यह केवल फिजिकल बात नहीं है। इस शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स, जो कि जब देवता थे हम, वो जो सिक्रीशंस था वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता था, परंतु द्वापर युग से ये सिक्रीशन बाहर निकलने लगा हार्मोन्स और ग्लैंड्स का। यहां पर सतयुग और त्रेता में यदि इनका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देवताओं का और अभी के मनुष्यों का, शरीर तो वैसा ही है, परंतु वो जो हार्मोन्स तब थे वो बाहर नहीं थे, वो अंदर ही सिक्रीशन अंदर ही रहता था। इस वजह से एक ब्रह्मचर्य और पवित्रता का तेज उनमें था। इस शारीरिक स्पर्श की क्रिया से वो हार्मोन्स एक्टिवेट होते, हलचल में आते, स्थानांतरित तो होते ही है, भले बाहर ना जाए परंतु स्थानांतरित होते हैं। इसके लिए सेकंड जो विच्छेद है, गांठ है, टाई नॉट, वो है स्पर्श। तीसरा, प्रशंसा करना। दूसरे की, चाहे स्त्री पुरुष की या पुरुष स्त्री की, अत्यधिक प्रशंसा करना, मन ही मन गुणगान गाना। गुणगान उनका गाया जाता है जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, परंतु एक होता है ज्ञान की रीति से प्रभावित होना, वो दूसरी बात है। यहां किसी के विशेषताओं से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाना कि बार बार उसी का चिंतन, उसी का गुणगान करना, उसी को देखना, उसी की बातें करना, मित्रों के बीच उसका गुणगान करना, मन ही मन प्रशंसा करते रहना, ये एक आसक्ति को जन्म देगा। चलो काम विकार तो यहां नहीं है, परंतु लगाओ, आसक्ति, अटैचमेंट, झुकाव, और ये सब जब आ गया तो बाकी का आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। फिर बुरी बात नहीं है कि हम किसी की बहुत महिमा गाए, परंतु बाबा ने यह भी बताया है कि किसी में चाहे कितनी भी विशेषता हो, दाता कौन है, दिया किसने है, उसने दिया, अगर उसने दिया ही नहीं होता तो मोहम्मद रफी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही है अपने बारे में। वो कहते हैं, मुझे अपने जीवन में बहुत प्रशंसा मिली मेरी आवाज के कारण, परंतु ये प्रशंसा मेरी नहीं है, उस खुदा की है। वो चाहे तो ये आवाज किसी और के कंठ में भी डाल सकता था, मेरे गले में, मेरे हलक में उसने ये आवाज डाली है। क्या वो चाहता तो किसी और में नहीं डाल सकता था? ये तो मेरा भाग्य है, बस मेरी महिमा की कोई बात ही नहीं है। उसी तरह यदि किसी में बहुत अच्छे गुण विशेषता है, हम उनकी अप्रिशिएट करें, कॉम्प्लीमेंट दें, प्रशंसा करें। एक है पर अत्यधिक प्रभावित हो जाना, फिर वही अच्छा लगना और बाकी अच्छा न लगना, उसी में विशेषता दिखना, बाकी किसी में कुछ भी नहीं दिखना, उसी की बातें करना, उसी को सुनना, उसी की प्रशंसा करना, और अगर कोई उसका विरोध करता है तो क्रोध आना, ये दिखाता है आसक्ति है, अटैचमेंट है, लगाव है, प्रशंसा। नेक्स्ट, वो जो दूसरी आत्मा है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, खेलना, संस्कृत में उसे केली कहा हुआ है, टू प्ले, साथ साथ खेलना, वो कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे स्थूल खेल भी हो सकता है, बैडमिंटन से लेके तो एनीथिंग, घूमना फिरना हंसी मजाक करना खेलना। और आज के युग में जो सोशल मीडिया है, फेसबुक व्हाट्सएप ईमेल, इसमें खेलना, एक मैसेज इधर से एक मैसेज उधर से, ये सब क्या है? खेलना ही तो है। वो इधर से नाराज, वो उधर से नाराज, वो इधर से मनाना, उधर से मनाना, इधर से एक संदेश, उधर से एक संदेश, इधर से एक फोटो, उधर से एक फोटो, इधर से एक सॉन्ग, उधर से एक वीडियो, ये सब क्या है? आसक्ति को ही जन्म देते, ये भी तो एक खेल नहीं है, ये भी तो एक खेल पाली है। हमारा समय कितना महत्वपूर्ण है और हम क्या कर रहे हैं? कितना ऊंचा लक्ष्य है, कितनी ऊंची ये पवित्रता की मंजिल है और हम क्या कर रहे हैं? हम वो हैं जो संसार को पवित्रता का सबक सिखाने वाले, पाठ सिखाने वाले। यदि हम ही उसमें कच्चे हैं, हमारा ही चित्त नीचे ऊपर हो रहा है, आंदोलित हो रहा है बार बार, अभी संपूर्ण ब्रह्मचर्य में वो स्थित नहीं है, तो कैसे हम किसी को कुछ बता पाएंगे? और बताए भी तो वाणी में वो प्रभाव नहीं होगा। पांचवा, गुह्य भाष्य। पांचवा है गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, एकांत में बात करना, एकांत में बात करना। एक है सबके सामने बात करना, परंतु दोस्ती जब बढ़ती है तो एकांत चाहते हैं, लंबी लंबी बातें चाहते हैं, लंबे लंबे मैसेज या बातें या ईमेल या मुलाकात। मुलाकात तो दूसरी बात है, ये पॉइंट हमारा है पांचवा, गुह्य भाष्य। एक तो समय जा रहा है, एनर्जी जा रही है, पैसे जा रहे हैं, पैसे भी जाएंगे ये सब चीजें करने में। सबसे महत्वपूर्ण तो संकल्प खर्च होते हैं, टाइम। इस तरह से दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो समय का कोई भान नहीं रहता है, वो एक घंटा भी हो सकता है, दो घंटा भी हो सकता है, सारी रात भी हो सकता है। इसके लिए गुह्य भाष्य, बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी की जरूरत नहीं है, अगर हो गई है तो स्वयं को डिटैच करो। नेक्स्ट, संकल्प। नेक्स्ट है छठवा, संकल्प करना। कौन सा संकल्प करना? समीप जाने का संकल्प करना, डिसीजन टू गो क्लोज फिजिकली। ये जो संकल्प है, इतना सब हो गया, अभी यहां पहुंचती है आत्मा, संकल्प। उसके आगे का पॉइंट है अध्यावसाय, संस्कृत शब्द है अध्यावसाय, जाना। पहला है संकल्प, छठवा, सातवां है समीप जाना, और अंतिम है क्रिया, एक्ट। ऐसी ये आठ चीजें हैं। इन आठ चीजों का किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में यदि खंडन होता है तो उसे ब्रह्मचर्य का खंडन माना जाएगा। और ब्रह्मचर्य ये प्रथम सोपान है। जब पवित्रता की बात की जाती है तो ब्रह्मचर्य आता है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, उसमें का ब्रह्मचर्य एक छोटा सा भाग है, परंतु छोटा होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उसको हटा दिया जाए तो ब्रह्मचर्य पवित्रता है ही नहीं फिर। इसके लिए पवित्रता का आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य, और इस ब्रह्मचर्य में यदि ये आठ चीजें हो रही है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन समझा जाएगा। इसके लिए अनब्रोकन सेलिबसी, आज के युग में कहीं ब्रह्मचर्य की कोई चर्चा नहीं है, चारों ओर कोई भी टीवी चैनल कुछ भी, सब जगह विकार ही विकार भरे पड़े हैं। जो भी संसार में है, देह और देह का प्रदर्शन, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसे इस विकारी वायुमंडल में यदि कोई संकल्प करता है कि मुझे संपूर्ण पवित्रता अपनानी है, तो साधना भी उतनी तीव्र करनी होगी। केवल आकर मुरली सुने, थोड़ा बहुत अमृत वेला कर लिया, दिन भर सेवाओं में बिजी रहे, इससे ब्रह्मचर्य बल नहीं बनेगा। कुछ एक्स्ट्रा साधना की आवश्यकता है, गहरे मनन की और गहरे चिंतन की आवश्यकता है, तो ही ये कार्य होगा। उसी 69 की मुरली में, जिसमें बाबा ने विष और मणि की बात की थी, कुमारों से मुलाकात, उसमें बाबा ने कहा था, आज से सभी कुमार यह प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा भी सुनाई थी बाबा ने कि आज के बाद हम देह को नहीं देखेंगे, केवल और केवल मणि को देखेंगे। यह प्रतिज्ञा है, और यह प्रतिज्ञा हमें रोज करनी है अमृत वेला बाबा के सामने, अलग अलग स्वरूपों से। सोचे कि जैसे बाबा हमें तिलक दे रहा है पवित्रता का, या वरदानी हाथ रख रहा है पवित्रता की, या फिर हम बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आज से हमारी दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पवित्र होगी। वास्तव में पवित्रता का जो सुख है, इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है, परंतु आत्मा उससे बहुत दूर रहती है। इसके लिए विकारों के सुख उसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, परंतु विकारों में सुख जैसे कहा है ही नहीं, भ्रामक सुख है, भ्रांति है सुख की। क्षणिक अनुभव हो रहा है सुख है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि सुख नहीं है उसमें। अगर सुख नहीं होता तो सारा संसार उसके पीछे क्यों है? सुख तो है, परंतु वो सुख अपने साथ दुख को लेके आता है, वो सुख अपने साथ एक बहुत डीप फ्रस्ट्रेशन को लेके आता है, वो सुख अपने साथ एक अजीब प्रकार का तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग और टेंशन लेकर आता है, जिसे कभी वो युगल समझ नहीं पाते, परंतु वो रहता है। गुजरात में बहुत समय पहले एक डाकू हुआ था, जोगीदास खुमान। उसके जीवन में एक वर्णन है कि एक रात वो डाकू बहरवटिया लेटा हुआ है, सो रहा है, और उधर से आवाज आती है छन छन छन। कोई एक स्त्री वहां आती है, 16 श्रृंगारित। वो आंख, उसकी आंख खुलती है, वो देखता है, कहता है क्या चाहिए तुमको, अपनी बंदूक लेता है। वो कहती है कि मैं आपकी वीरता से बहुत प्रभावित हूं और मुझे आप जैसा ही पति चाहिए, और बहुत सारी उसके साथ बातें करती है। वो कहता है कि मैं किसी स्त्री के साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं डाकू हूं, और हमारा जो खानदान है उसमें कहीं कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि स्त्री जैसे आती है हमारे जीवन में हम नीचे चले जाते हैं। तो वो कहता है उसको, पर वो नहीं मानती। बाद में कैसे भी उसको समझा बुझाकर वो भेज देता है, और उसके बाद दिखाया जोगीदास खुमान कभी अकेला नहीं सोया, उसके दो अंगरक्षक रहते थे। किसी शत्रु से डर नहीं था उसे, पर नैतिक पतन से उसे डर था, क्योंकि उसे पता है उसका जो तेज है, जो बल और साहस और शौर्य है, भले वो डाकू था परंतु इस बात में बहुत ही पक्का था। कुछ दिनों बाद दिखाया है वो सुबह सुबह खेत से जा रहा है और खेत में देखता है एक स्त्री, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है, वहां पर खेत में कुछ फसल काट रही है। तो वो रुकता है, उसके उस स्त्री से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है इतनी सुबह सुबह अकेले यहां पर खेती में फसल काट रही हो। वो कहती है, जब हमारा भ्राता जोगीदास खुमांग है तो इस गांव की बहु बेटियों को किसका डर। अब उसको ये नहीं बता रहता कि यही वो है, पर ये व्यक्ति, वो डाकू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। वो हो डाकू, डाकू जो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, उसके वजह से धर्म भ्राता बन गया है उस गांव का वो। तो क्या हम आत्माएं, भगवान की चुनी हुई आत्माएं, पवित्र कार्य करने वाली आत्माएं, यदि उस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर ले तो कैसी दिव्यता, सारे विश्व के धर्म भ्राता हम बन जाए। तो पुनः इस व्रत को रिवाइज करना, धारण करना, जो आठ बातें बताई, फिर उसके ऊपर चिंतन करना। और एक अंतिम बात, स्वप्न। बाबा ने कहा है, तुम्हारी पवित्रता स्वप्न तक हो, तुम्हारे पवित्र स्वप्न हो। स्वप्न भी वही आता है जो हम सारे दिन भर देखते हैं, इसकी चर्चा कभी और करेंगे। पांच प्रकार के स्वप्न होते हैं, उसमें से एक है सारे दिन भर जो हमने किया वही रात में दिखता है, एक। और दूसरा है सारे दिन भर जो दमन हुआ है वो रात में निकलता है, जैसे कोई जबरदस्ती उपवास करे दिन भर तो रात में उसे भोजन ही दिखेगा। जो दिन भर दमन हुआ है वो रात में बाहर निकलता है। ये दो प्रकार है, और तीन दूसरे हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। परंतु जिसका दिन भर दमन हुआ है और जो दिन भर हमने किया देखा, इसके लिए हम इन आंखों से क्या देख रहे हैं और इन कानों से क्या सुन रहे हैं, इन आंखों से क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। टीवी खोल दिया, चैनल खोल दिया, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, चल रहा है और हम देखने बैठ गए। परंतु ये नहीं भूलना, जो सुबह बात बताई वो 3D है, एक बार देखा हुआ भूलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं। अपने कमरे में यदि रहते हैं तो ऐसे चित्र वहां लगाए कि जिससे पवित्रता जाग उठे। कुछ दिन पहले मुरलियों में था ना, चित्रों के सामने जाकर बैठ जाओ। 3-4 दिन पहले मुरली में था, लक्ष्मी नारायण के चित्र हो, स्वर्ग के चित्र हो, ऐसी दिव्यता से भरा हुआ हमारा कमरा हो, ताकि जहां हमारी नजर जाए पवित्रता के भाव हमारे अंदर जागृत हो। ऐसे कोई चित्र ना हो जिससे कामुकता जागृत हो। हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, उस सभी बातों में रॉयल्टी हो। और हमारे अंतिम बात एक तो स्वप्न की थी और एक दूसरी बात है संबंध। वो संबंध तो छोड़ दिए, परंतु इस अलौकिक परिवार में ऐसे ऐसे संबंध जोड़ देते हैं, उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। अलौकिक जीवन में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के बीच लगाव, झुकाव और संबंध, ऐसे संबंध उत्पन्न हो जाते हैं कि छूट नहीं पाते फिर उससे। उस संबंधों में हमेशा वो डिटैचमेंट हो, वो उधर हम इधर, भले कार्य एक ही है। दोष ना तो स्त्री का है और ना ही पुरुष का है, दोष उम्र का है। दोष ना तो स्त्री का और ना ही पुरुष का। दोष किसका है? उम्र का। इसके लिए सभी कुमार सावधान। अच्छा, ओम शांति।
मन मीत जहां